अनुशासन लेक्चर नंबर 64 अनुशासन नामक ग्रंथ है और उस पर क्षुल्लक मनोहर जी वर्णी जो सहजानंद जी उनके प्रवचन हुए हैं। अब इस आत्मानुशासन प्रवचन के द्वितीय पुस्तक है जिसमें चतुर्थ भाग प्रारंभ हो जाता है। यहाँ हम उसका जो पहला श्लोक है 82 नंबर का उसको पढ़ेंगे और यहाँ से अपना चतुर्थ भाग यानी दूसरी पुस्तक आज शुरू हो जाती है। प्रसुप्तो मरणाशंकां प्रबुद्धो जीवितोत्सवम् प्रत्ययं जनयत्तेश तिष्ठेत् पाये कियच्चिरम्। ये पंडित टोलेमी जी का अर्थ और भावार्थ देख लेते हैं हम 82 नंबर। यहाँ कहते हैं यह आत्मा दिन प्रति सूता हुआ तो मरण की आशंका उपजावे है और जाग्या हुआ जीवने का उत्सव को उपजावे है। यानी जागा और मरना की सोना की अपेक्षा से मोह निद्रा में सोना इस तरह से ऐसी जागती दशा सो यहु जीव शरीर विषय कितने चिरकाल पर्यंत तिष्ठे अपितु न तिष्ठे। क्या कहना चाहते हैं कि भावार्थ में बता रहे हैं यहू जीव सोवे तब तो मृतक सदृश हो ही जाए। अच्छा मरण की आशंका हो जाए लगता है जो मर गया और जागे तब जीवता हो ऐसे अकी प्रतिदिन दशा हुआ करे तो जैसे तो नित्य छिपे ताकि भागने का भरोसा नहीं तैसे या का शरीर विषय रहने का भरोसा नहीं शीघ्र ही शरीर को छान लेगा छिपे नहीं छिपना नहीं पर छिप जाना कहते शीघ्र ही शरीर को छांडेगा ऐसा निश्चय करी करना होई सो कार्य करी लेना यानी जो करने जैसा है वो कार्य करो क्योंकि शरीर कब छूट जाएगा कुछ भरोसा नहीं। अब यहाँ तो विस्तार से समझाएंगे यह आत्मानुशासन प्रवचन पुस्तक में पढ़ते हैं। चिरकाल किसी एक शरीर में ठहरने का एक ठहरने का अवकाश यह मनुष्य जब सो जाता है तो मरण की आशंका को उत्पन्न करता है। यानी ऐसा लगता है मर गया क्या जिगना है और जब जग जाता है तो जीवन के उत्सव को किया करता है अर्थात प्रतिदिन यही हाल हो रहा है कि सो गए तो मरण की तरह बेसुध हो गए और जब जग गए तब कुछ जीने जैसा हाल हुआ। ऐसे तो रोज मरना और रोज जीना सा बन रहा है ऐसे शरीर में कितने क्षण यह जीव ठहरेगा। निर्मूल व्यामोह ये व्यामोह है मोह विशेष मोह इस जीव को व्यर्थ का एक ऐसा मोह लग गया है निर्मूल है उसका बेकार का है बिना वजह का है पर उसके कारण इसको दुख भुगतना पड़ रहा है। कि व्यर्थ का एक ऐसा मोह लग रहे हैं जिसके कारण यह अपनी इस ज्ञान निधि की सुध न रखकर, ये ज्ञान निधि है वो खजाना है और उसके बारे में इसको पता ही नहीं है, उसकी सुध न रखकर भिन्न यानी अपने से जो जुदे पदार्थ है भिन्न कैसे असार, उसमें सारभूत कुछ नहीं है, सारभूत हम स्वयं अपने आप में है, परंतु अन्य जो भिन्न असार बाह्य पदार्थों में अपनी दृष्टि बनाए रहता है। ये शरीर से लेकर सबको बाह्य में रखा है, तो शरीर को तो स्व में रखता है और बाकी बाह्य बाह्य के अमुक पर से मुझे सुख मिलेगा ऐसी कुश्रद्धा कर लेने के कारण ये उसने मान्यता बनाई, खोटी कल्पना कर ली है, इसके दृष्टि पर की ओर ही रहा करती है। यानी विशिष्ट चीजें हो जाएगी, ये संयोग ऐसा पलट जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, उसके लिए क्या नहीं करते हम, देखते हमारी जो सारी जो कुछ लौकिक जो दिन दिनचर्या है गतिविधियां हैं उसी के लिए चल रही है। और जब तक किसी भी परपदार्थ की आशा का परिणाम रहेगा तब तक यह शांत रह ही नहीं सकता, चाहे किसी को पाना है किसी को दूर करना है, उसी की झंझट उसी के लगातार वो मन में उसी के विचार चलते रहेंगे घूम घूम और वहीं पर आ जाता है, क्योंकि तो शांत नहीं रह सकता। आशा किया, आशा करके चेष्टा कर करके थक गया तो कुछ निद्रा ली, और कहो निद्रा में भी आशा की कल्पना जगी रह सकती है, स्वप्न आएंगे तो उसी तरह के स्वप्न आएंगे। एक मनुष्य सो गया, सोते हुए मैं स्वप्न देखा, मुझे साहब ने 25 गाय इनाम में दी हैं। 50 गाय इनाम में दी हैं। अब कुछ ग्राहक लोग गाय खरीदने को आए, कहा इन गायों में से जो गाय चाहो छांट लो और खरीद लो। 10 गाय छांट ली, कितने में दोगे? 100-100 रुपए में देंगे। ग्राहक बोले 40-40 रुपए में दोगे? 50 में दोगे? स्वप्न वाला बोला खैर 80-80 में लगाओ। अच्छा 60-60 में दे दो। नहीं भाई 80-80 की देगी। अच्छा 70-70 रुपए में दोगे? नहीं भाई। दोनों में जिद की बात हो गई, ग्राहक 70-70 में लेने को तैयार था और वह पुरुष 80-80 में देने को तैयार था। यह सब स्वप्न की बातें कही जा रही है, कुछ ध्यान है ना? तो उस जिद की होड़बाजी में उस पुरुष की आंखें खुल गई, देखा कि यहाँ तो एक भी गाय नहीं है, सो उसने आंखें बंद कर ली और कहता है अच्छा भाई ले लो 70-70 रुपए में, चलो 70-70 रुपए ही दे जाओ। ऐसा ही यहाँ हाल यहाँ है, विकास का आवरण, ये हमारी जो ज्ञानादि गुणों का विकास रुक गए, वो आवरण कोई कर्म ने नहीं डाला, हमने ही डाला है, ये हमारे परिणाम है ना। मोह की निद्रा में कितनी कल्पनाएं जगती है, ओ है तो यह अपने स्वरूप में एकत्व रूप, प्रत्येक जीव अपने स्वरूप में ही है, अपने से ही है, जैसा है तैसा शुद्ध है, एक ज्ञान पुंज है। क्या अपना स्वरूप ऐसा भाषित हो रहा है कि मैं एकमात्र ज्ञान पुंज हूँ जिसमें सत्व की ओर से किसी प्रकार की विडंबना विपदा नहीं है। सत्व ने उसका जो अस्तित्व है वो तो परिपूर्ण है, जैसा है वैसा है, उसमें कोई विडंबना कोई अधूरा कोई विपरीतता कुछ नहीं है। समस्त जगत से न्यारा है, अनंत आनंद का स्वरूप है। सारी बात इसकी सही है, पर इस सही बात को न मानने के कारण, यानी इसका स्वरूप जैसा है वैसा ही अनादि से है, उसने माना नहीं, बस ये गलती हुई उसकी कि सही बात को न मानने के कारण यह गलती में इतना बढ़ गया कि कल्याण की इच्छा भी कदाचित हो जाए, फिर भी ये सारी आकुलताएं गलतियां और जो अंतरंग में मोह का आशय पड़ा हुआ है, आशय ने वो अभिप्राय है, वे सब आत्मा की ओर नहीं आने देते। आत्मा की ओर नहीं आने का, आत्मा तो वो स्वयं है परंतु विचारों में उसने अपने को इतना दूर कर दिया है कि अपने को अन्य कुछ मान लिया है। गोल गोल भटकना, अहो इस मोही जीव की रात दिन की कैसी चर्या है, घूम घाम कर वही जैसे कोल्लू का बैल उसी स्थान पर आ जाता है। कोल्लू का बैल समझते हैं? वो घानी होती है ना तेल जहाँ पीते हैं, तो वो तो पत्थर होता है और वो तो बैल से ऐसा वो गोल 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 घुमाते हैं और उसको पीसते हैं, तो गोल गोल वहीं पर घूमता है, जहां से गया वही आया, वही चली, वही जैसे ऊपर वही लिखा था ना, यही के ऊपर बिंदी, वहां ही उसको वही कहते हैं। जहां से गया वही आया, ऐसी ही अज्ञान की पट्टी आंखों में बंधी है, इसे शुद्ध मार्ग नजर में नहीं आ रहा है, गोल गोल अपने को घुमा रहा है। कितना गोल है, मोटा गोल तो चारों गतियां हैं, इस गति से गया उस गति में आया, उससे गया उसमें आया, यह गोल गोल चक्कर चल रहा है। तो हमने ये भी देखे ना परावर्तन, गोल कहो परावर्तन को एक ही बात है ना, हमने अन्य अन्य परावर्तन भी देखे थे, यहाँ तो गतियों की अपेक्षा बता रहे हैं। फिर उसके बाद तिर्यंश का गोल है और ऐसे इस असमान जातीय द्रव्य पर्याय के गोल में चक्कर लगा रहा है। ये क्या शब्द आया, असमान जातीय द्रव्य पर्याय, ये क्या बला है मालूम है मनीषा में? मिला क्या नहीं मिला? ये तिर्यंश के बाद लिखा है ना, हाँ ये असमान जातीय द्रव्य पर्याय, इसका अर्थ समझ में आया के नहीं आया? नहीं, देखो एक तो समान समान जाति के द्रव्य जुड़ जाते हैं, जैसे स्कंद है, ये स्कंद है, इसमें सारे एक ही जाति के द्रव्य, कौन से पुद्गल, उसको कहेंगे समान जातीय द्रव्य पर्याय। द्रव्य पर्याय ने अनेक द्रव्यों की मिली जुली जो पर्याय यानी बंधी हुई, अनेक द्रव्यों की बंध अवस्था है उसको यहाँ पर्याय कहते हैं। द्रव्य में जो ज्ञान दर्शन चारित्र वगैरह की पर्याय उसकी बात नहीं, उसको गुण पर्याय कहेंगे, उसमें भी अर्थ पर्याय होगी बाकी और प्रदेशत्व गुण की व्यंजन पर्याय होगी। और ये कैसे द्रव्य पर्याय, अनेक द्रव्यों की मिली जुली, तो असमान यानी भिन्न दो जाति के द्रव्यों का एक जगह जो कोई बंद हुआ है, वो क्या है, जीव है, कर्म है और शरीर है। अभी जो मनुष्य पर्याय है उसको क्या कहेंगे, असमान जातीय द्रव्य पर्याय। मनुष्य है, तिर्यंच है, देव है, नारकी है, ये सब क्या है, असमान जातीय द्रव्य पर्याय। वहाँ एक जीव और अन्य अनंत पुद्गल परमात्मा, इनकी बंध रूप जो अवस्था है उसको यहाँ असमान जातीय द्रव्य पर्याय कहा। देखो ऐसे, हाँ क्या प्रश्न है? नहीं, दोनों डिफरेंट है, अभी मैं वही बता रही थी ना। देखो द्रव्य में जो अनंत गुण है, उन गुणों की जो पर्याय है, उनमें सभी गुणों की पर्याय को अर्थ पर्याय कहते हैं और प्रदेशत्व गुण की पर्याय को व्यंजन पर्याय कहते हैं। प्रत्येक द्रव्य में अर्थ और व्यंजन पर्याय होती है। अब यहाँ बात है अनेक द्रव्यों की एक बंधन रूप अवस्था, जैसे पुद्गलों में स्कंद और जीव और पुद्गल की बंध रूप अवस्था, क्योंकि अन्य कोई द्रव्य तो बनते ही नहीं आपस में,
तो सिद्ध में तो आत्मा 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 है, तो एक ही द्रव्य,
वहाँ तो असमान नहीं, वह तो किसी से बंधा नहीं है,
स्वभाव नहीं है
उसमें, द्रव्य पर्याय नहीं है, ये तो स्कंद है, ये समान जातीय द्रव्य पर्याय, कैसा स्कंद, अकेला आत्मा है ना,
किसी से
कैसा पिंड, किसका पिंड, ज्ञान का पिंड है ना, उसका एक ज्ञान पूरा ज्ञान स्वरूप है, ऐसे अनेक ज्ञान 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 मिलकर ज्ञान पिंड नहीं हुआ है, ज्ञान का पुंज कहो, पिंड कहो, शरीर ही कहो, बात वो समझाने के लिए बता रहे, ज्ञान मय है वो बताने के लिए, घन रूप है उसका अपना विस्तार है, इसलिए उसको कहेंगे ज्ञान पिंड ज्ञान घन, पर ये अनेक द्रव्यों से मिला हुआ नहीं है, अनेक सिद्ध मिलकर एक द्रव्य नहीं हो रहा था। अनेक आत्मा जुड़ते नहीं कभी, तो आत्मा भी कभी नहीं जुड़ते क्योंकि उनका बंध नहीं हो सकता। बंध तो मात्र पुद्गल पुद्गल में है, और ये जीव पुद्गल का अनादि से है, किसी ने मिलाया नहीं पर अनादि से है, इसलिए उसको भी उसमें ले लेते हैं। एक ही क्षेत्र में रह रहे
हैं,
पुद्गल अलग अलग होकर भी वो जुड़े हुए
नहीं है।
आत्मा में जुड़ना नहीं
है, खाली समा नहीं जाना चाहते, वो भी समा नहीं है।
देखो ये भूतकल द्रव्य जो है उसका स्कंध क्यों बनता है, सुनो सुनो अभी आप शांति से सुनो। देखो भूतकल द्रव्य में स्पर्श नाम का गुण है, और स्पर्श गुण में स्निग्ध और रुक्षांश नाम की उसकी परे है, स्निग्ध रुक्ष। तो स्निग्ध और रुक्ष में दो गुण का अंतर होगा भी सुनना खाली, तो उसका बंध होता है, यानी दो से चार के साथ या चार के छह के साथ दो के साथ ऐसा होगा। तो ऐसा स्पर्श गुण जीव द्रव्य में है क्या?
नहीं।
तो उसका बंध नहीं होगा, इसलिए आपको आत्मा आत्मा लगता है, निगोद के एक शरीर में आनंद जीव रहते, लेकिन वो प्रत्येक जीव जुड़ा है, उनका स्कंद नहीं है। स्कंद सिर्फ शुक्ल द्रव्य में ही होगा, अन्य कोई द्रव्य में नहीं होगा, क्योंकि आकाश द्रव्य धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य एक एक ही है, लेकिन काल द्रव्य असंख्यात है, तो उनका भी तो बंध होगा। तो कहते नहीं होगा, क्योंकि उनमें स्पर्श रस गंध वर्ण नाम के विशेष गुण जो उद्गल के है, उसमें इससे खास स्पर्श गुण जो है वह सिर्फ उद्गल द्रव्य में है, इसलिए वहां उसका बंध होगा। चल मैं अब देखो शोभा को एक बात बताना चाहता हूँ, शोभा सुनती है क्या?
सुन रही।
हाँ देखो बात ऐसी है कि पर्याय जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक गुण पर्याय और एक द्रव्य पर्याय। द्रव्य पर्याय की बात अभी उज्ज्वला ने बताई आपको कि समान जाति द्रव्य पर्याय और असमान जाति द्रव्य पर्याय, वैसे ही पर्याय के दूसरा भेद है गुण पर्याय, उसके अर्थ पर्याय। एक गुण को छोड़कर बाकी सब पर्यायों की जो कोई पर्याय गुणों की पर्याय होगी उसको अर्थ पर्याय कहेंगे, और जो प्रदेशत्व नाम का सामान्य गुण है प्रत्येक द्रव्य में है, इसका अर्थ प्रत्येक द्रव्य में कोई ना कोई आकार रहेगा, वो आकार जो है वह उसका व्यंजन पर्याय है। तो ये व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय ये गुण पर्याय की अपेक्षा से भेद किए गए हैं, और द्रव्य की अपेक्षा से समान जाति या असमान जाति पर्याय ऐसा दूसरा भेद किया गया है। अब उज्ज्वला बोलेगी।
मनीषा बहन ख्याल में आया? दो दो आत्माओं का मिलकर स्कंध या जुड़ान नहीं होता, कभी भी नहीं। सिद्ध में भी सब मिलकर एक अनंत में विलीन हुआ, अन्यमति कहते अनंत में विलीन हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। हर एक आत्मा अस्तित्व जुदा जुदा है, कोई एक आत्मा दूसरे से जुड़ नहीं जाता, वहाँ पर अनेक सिद्धों के आत्मा एक दूसरे से नहीं जुड़ते। अरे वहाँ ऐसे से प्रश्न आए थे, अर्धनारी नटेश्वर क्या है, कल्पना है और क्या
रागी जीवों की कल्पना।
वही तो हमने तो बोल दिया, मनुष्य ने ईश्वर को निर्माण किया, ईश्वर ने मनुष्य को नहीं निर्माण किया, ये कल्पित है ना। ईश्वर के बारे में जो कुछ बातें चलती है रागी देवता वगैरह, अभी अभ्यास नहीं है, क्या है उसको, क्या है ऐसा, उसका अर्थ क्या है, ये वेद संबंधी बात चल रही थी। तो अर्धनारी नारी नटेश्वर क्या है, बोला ना जो भाव वेद है उस भाव में तो नहीं बदलता है, उसके लिए ऐसे कुछ अटपटे प्रश्न पूछते हैं। देखो अभी हम देख ये गोल गोल की बात बता रहे थे ना, गोल गोल घूम रहे ना वापस लौट कर वहीं पर आ जाता है, यानी कितने भाव करके वापस वहाँ पर जन्म उस पर्याय में धारण करता है। यहाँ लिखा देखा ऊपर से उस पैराग्राफ की पांचवी लाइन, उसके बाद तिर्यंश का गोल है और ऐसे इस असमान जातीय द्रव्य पर्याय के गोल में चक्कर लगा रहा है। फिर एक एक पर्याय का भी बड़ा गोल है। जैसे आज मनुष्य पर्याय मिला तो मनुष्य का जीवन जितने समय का है उसमें भी यह गोल गोल घूम रहा है। और तो जाने दो, ये जीने दो नहीं जाने दो करो, और तो जाने दो, 24 घंटे का भी बड़ा गोल है। यानी हम रूटीनली वही वही चीजें करते हैं ना, जो सुबह उठकर पहले चाय पियेंगे, फिर जो कुछ करेंगे भगवान का दर्शन करेंगे, फिर गोल गोल स्वाध्याय करेंगे। रूटीनली 24 घंटे का भी बड़ा गोल है। इसी समय आप कल शास्त्र सुनने आए थे, इसी समय पर आप कल शास्त्र सुनने आएंगे। आज जो दाल रोटी चावल खाया था वही कल भी खाया था, वही कल भी खाएंगे। यानी कल खाया था नहीं, गई कल, गई काल, और आने वाला कल, कल भी खाएंगे आवती काल। उसी समय पर दुकान जाएंगे, उन्हीं कामों को उसी समय पर आज भी करेंगे जो कल किए थे। तो जब तक जिंदा है तब तक वही वही चक्कर लगाता रहता है। कोल्लू के बैल की नाई, नाई यानी उसकी तरह, कोल्लू के बैल की तरह यह गोल गोल चक्कर लगा रहा है। पर जैसे पट्टी बंधे हुए बैल को कुछ भी भान नहीं हो पाता कि मैं गोल गोल चक्कर लगा रहा हूँ, ऐसे ही अज्ञानी जीव को यह भान नहीं हो पाता मैं गोल गोल चक्कर काट रहा हूँ। वह तो जानता है मैं रोज रोज नया नया उन्नति का, बढ़वारी का, सुख का काम कर रहा हूँ। विभाव भ्रमण, भावों का गोल देखिए, पंचेंद्रिय के विषय और छठा मन का विषय, इन छह का नोल लग रहा है,
गोल गोल लग रहा
है,
गोल चाहिए ना। इस संसारी प्राणी ने इन छह विषयों के अतिरिक्त अन्य कुछ भी अनुभव किया है क्या? अब पेट भर गया तो थोड़ी सी सुगंधित चीज भी चाहिए, इत्र कान में लगाया, कोट के कालर में लगाया, यह शौक पूरा किया तब धन कमाने की लौ लगी है, चलो मन का विषय लगने लगा, अब सुंदर रूप निहारने लगा, अब संगीत का विषय चाहिए। कितना गोरख धंधा, कितना गोल चक्कर है जिसमें लाभ तो कुछ नहीं मिलने का है और अपने आप को बर्बाद किए जा रहा है। विकास के पीछे, जैसे देखते कि कोई किसान जो मामूली पढ़ा लिखा भी नहीं है वह अपनी खेती करके सूखा रूखा खाकर संतुष्ट बना रहता है, पर थोड़ा पढ़ लिख लिया तो अब उसके संतोष नहीं रह पाता, अब असंतोष और तृष्णा बढ़ने लगती है। कुछ थोड़ी सी नगर में जानकारी हुई, प्रतिष्ठा हुई, कीर्ति मिली तो अब असंतोष और बढ़ने लगा, और यश भी बढ़ गया जो बिल्कुल व्यर्थ का है। आज जीवन है, थोड़े समय बाद मरण हो गया तो अब क्या रहा इसके पास? किसी ने कुछ प्रशंसा कर दिया तो उससे लाभ इसका क्या हो गया? कुछ भी तो यहाँ रहना नहीं है, और फिर कितनी संकुचित दृष्टि होती हो जाती है। विश्व में यशो विस्तार की असंभावता, अरे तुझे यश चाहिए तो कहाँ चाहिए, सारी दुनिया में। यदि सारी दुनिया में तेरा यश फैल जाए तब तो अच्छा है। इस दुनिया के एक असंख्यात हिस्से में जो समुद्र में बूंद बराबर भी जगह नहीं है, इतनी जरा सी जगह में यश फैल गया तो क्या हो गया? दुनिया समझते हैं? असंख्यात का हिस्सा क्यों कहा? लोग का असंख्या तो अभाव है जहाँ हम रहते हैं, पूरे आपके अमेरिका, पूरा जो जितने आपको मालूम है दुनिया, उसको भी कंसिडर करेंगे तो वो भी लोग का असंख्या का अभाव हो गया। तो उसमें तेरा यश फैल गया तो क्या हुआ? उससे बचे हुए सारे असंख्यात लोग तो तेरे यश से रहित हैं। इतने में क्यों झूठा संतोष मानता है किसी का फैल भी सकता है क्या समस्त लोक में यश? कल्पना कर लो, झूठ भी जबरदस्ती मान लो कि फैल गया सारे लोक में यश, तो भी उसकी दृष्टि में तू दुखी रहेगा, शांत न रहेगा। सर्व जीवों में यशो विस्तार की असंभवता। तो किनमें यश फैलाना चाहता है? पहले पूछा था तो कहाँ कहाँ यश फैलाना चाहते हैं? तो कहते जीवों में, तो फैला लो सब जीवों में तो कुछ अच्छा भी है, पर जितने जीव है उसके असंख्यात भाग की संख्या में भी तेरा यश फैल नहीं पाता। अनंतानंते भाग प्रमाण जीवों में कदाचित कुछ बात चलती है जिसमें कुछ लोग अपनी कल्पना के अनुसार प्रशंसा के शब्द गाने वाले हो जाते हैं। प्रथम तो सब मनुष्यों में ही यश नहीं फैल सकता। आज जितने मनुष्यों का भूगोल में परिचय किया है उन सब में नहीं फैल सकता। मनुष्य ही इससे कई गुना अधिक अभी पड़े हुए हैं। और सब मनुष्यों में यश भी नहीं फैलता, और जितने में यश फैलाया है वह भी शुद्ध हो भला हो सो भी बात नहीं है। यश के साथ अपयश भी लगा हुआ है। कोई पुरुष ऐसा नहीं है जिसकी मात्र कीर्ति ही फैले, उसके साथ में अपयश भी लगा रहता है। हो कोई ऐसा तो बताओ जिसकी विशुद्ध कीर्ति हो। अच्छा वह एक भी गांव में भला हो ऐसा कोई बताओ, उसके साथ कुछ न कुछ अपयश भी लगा रहता है। सब मनुष्यों में मेरा यश फैल गया यह भी झूठी कल्पना है। यहाँ सब मनुष्य ही जीव है क्या? अभी तो घोड़ा गधा आदि सारे जीव पड़े हुए हैं, वे भी तो तेरी कला को अभी नहीं जानते हैं, कैसे तेरी वे प्रशंसा करते? वे तो तेरी प्रशंसा करते ही नहीं है, उनसे भी तो अपनी प्रशंसा करवा। अहित का अहित रूप से निर्णय का प्रसार, यानी हमें तो सही निर्णय करना है। हित को अहित रूप, अहित को अहित रूप, जो त्यागने योग्य त्यागने रूप, जो प्रकट करने उसको उसको ही जो काते हो श्रद्धा अनुसार कर दो। यहाँ तो ये जो मन के विषय है, इंद्रियों के विषय है, मन के विषय में ये स्पेशली यश की चाह उसको ले लिया। यह मन का विषय झूठा और अहितकारी है। यह मनुष्य यों हेर फेर कर उन्हीं विषयों में लगा रहता है और मानता है कि मैं उन्नति का कितना सीधा काम कर रहा हूँ। पहले तो यह ही निर्णय कर लो, हम जिस परिस्थिति में रुचि रखते हैं, जिस भाव में बसा करते हैं, वह भाव वह परिस्थिति सब विपदा है। क्योंकि किस भाव में है, या तो शुभ या अशुभ भाव में है, वो सारी विपदा ही कहे। इतना भी निर्णय नहीं कर सके तो आगे बढ़ने का कोई साधन नहीं रहेगा। पहले जान तो लो सही बात। यह बात जब विदित होगी तब वस्तु के यथार्थ स्वरूप का भान रहेगा। यानी पहले निर्णय में तो कर लो, ये तो करने छोड़ने की वो बात नहीं है, निर्णय करने की बात। सबसे पहले पदार्थों की विविधता, पदार्थों की चाहिए ना, अनेक क्वेश्चन है। विविधता में प्रत्येक की स्वतंत्रता, जुदा जुदापन है। प्रत्येक पदार्थ अपने ही स्वरूप में मग्न है, अपने ही स्वरूप अस्तित्व में स्वतंत्र है। हमने देखा प्रत्येक का द्रव्य क्षेत्र काल भाव जुदा है, ये अपने में ही परिणमन करता है, स्वयं ही करता है, ना पर की कोई अपेक्षा उसमें कि यह आएगा निमित्त आएगा तो परिणम करूंगा, ऐसी भी बात नहीं है, उसमें कोई पराधीनता नहीं है, अत्यंत स्वतंत्र है। प्रत्येक पदार्थ अन्य समस्त पदार्थों से अत्यंत भिन्न है। देखो कितनी स्वतंत्रता है, परंतु इसको इसका ख्याल नहीं आ रहा है। चाहे कोई जीव हो या अन्य अणु आदि अजीव हो, एक परमाणु तक का भी स्वतंत्र है, उसकी भी पर्याय अपने से होती है, उसमें भी किसी पर की अपेक्षा नहीं है। एक का स्वरूप किसी दूसरे में प्रवेश नहीं कर सकता। और ये तो मानता है उस क्षेत्र में जाएंगे वहां से परमाणु आएंगे कि वाइब्रेशन आएंगे और मेरा कल्याण होगा, है ना। ये क्या लिखते हैं, प्रत्येक परमाणु प्रत्येक जीव प्रत्येक पदार्थ स्वतंत्र है, हालांकि लोक में प्रत्येक प्रदेश पर छह द्रव्य बस रहे हैं, है ना। ये सिद्धांत प्रवेशिका में यही तो सिद्ध करते हैं। ये लिखित रूप से यहाँ आया है पहली बार, हम तो उसको सिद्ध करते आए अभी तक। धर्म द्रव्य सारे लोक में व्याप्त है, यो अधर्म द्रव्य भी और कालाणु काल द्रव्य प्रत्येक प्रदेश पर स्थित है। आकाश तो असीम है, असीम है पूरे लोक में तो है, बाहर भी अनंत अनंत है, और जीव भी प्रत्येक प्रदेश में है।
जीव भी प्रत्येक प्रदेश में है,
कोई ना कोई जीव है ना प्रत्येक प्रदेश पर, लोकाकाश का प्रत्येक कोई ऐसा प्रदेश खाली है जहाँ एक भी जीव ना हो, नहीं समझे। लोक का ऐसा कोई भाग है आपको मालूम है कि जहाँ कोई एक भी जीव ना रहता हो? ऐसा नहीं, सूक्ष्म इंद्रिय तो पूरे लोक में ठसा ठस भरे है, हमें लगता है यहाँ बीच में कुछ नहीं है, पर कितने जीव हो गए यहाँ पर, सूक्ष्म निगोद भी तो भरे पड़े हैं सर्वत्र। यहाँ लिखा वही तो, जिसे हम पोल समझ रहे हैं, पोल है जो पोल हॉलो लगता है, यह भी कुछ नहीं है, वहाँ अनंत जीव बस रहे। कैसे अनंत? सूक्ष्म निगोद जिसको किसी आधार की जरूरत नहीं, बिना आधार के पूरे लोक में रहते है, यह अनंत जीव है। और जहाँ ये सारे संसारी जीव है उसके साथ ही अनंत परमाणु लगे हैं, क्योंकि हर एक जीव के संसारी जीव के साथ उसका कर्म है, उसका तेजस शरीर है, और वो एक एक शरीर में कितने अनंत अनंत परमाणु, उसके हर एक के अपना औदारिक शरीर है, और वो सारे परमाणु हृदय, फिर और भी परमाणु है, यानी जीव के साथ लगे हुए तो है ही है, और जो जीव का कुछ नहीं लेना देना ऐसे तो कितने अनंत अनंत है। यद्यपि लोक के प्रत्येक प्रदेश पर छह द्रव्य विराज रहे हैं, अब वो किस पद्धति से रहे हैं, उनका क्या संबंध है आपस में, आपको याद है इसको कौन सा संबंध कहते हैं? छह द्रव्य एक ही लोक में रह रहे हैं, उनका आपस में कौन सा संबंध है? ये सबको आता है, बोलो। एक क्षेत्र होगा, आपने सुना है ना, एक ही क्षेत्र में अवगाहना, फिर भी प्रत्येक जुदा जुदा है, प्रत्येक अपना अस्तित्व सेपरेट जुदा। क्या कहते हैं? यद्यपि लोक के प्रत्येक प्रदेश पर छह द्रव्य विराज रहे हैं, तथापि जैसे एक घर में रहने वाले चार आदमियों में सब में परस्पर में अनबन हो जाए, तो एक घर में रहते हुए भी एक दूसरे से मिलते नहीं है, यह मोटी बात कही जा रही है। इन्हें बहुत स्थूल उदाहरण, यूं तो उस प्रदेश पर रहते हुए भी वे समस्त द्रव्य अनमिले हैं, कभी भी एक में खोते ही नहीं है, हर एक का अपना द्रव्य जुदा है, क्षेत्र जुदा है, अपना अपना मैटर सब्सटेंस जुदा है, अपना अपना काल है, अपने अपनी जो पर्यावरण का क्रम जुदा जुदा है, और अपने भाव है उनके अपने अनंत गुण प्रत्येक के अपने अपने है, जुदे जुदे है, उसको कहते अनमिले है। हमारा द्रव्य हम में ही है, हम में ने हम स्वयं उस द्रव्य रूप है, हमारी प्रत्येक द्रव्य क्षेत्र गुण की परिणतियां हम में ही है। देखो द्रव्य लिया है, क्षेत्र लिया, गुण यानी भाव लिया, और परिणतियां में काल लिया, द्रव्य क्षेत्र काल भाव हम में ही है। दूसरों के द्रव्य क्षेत्र काल भाव की परिणतियां उनकी उनमें ही है। इसलिए पर से हित पाने की असंभवता, यानी पर से कुछ लेना देना नहीं, कोई ना हित होता है ना अहित होता है। समस्त जीवों का, समस्त पदार्थों का, उनका अपना अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव उन ही में अपने खुद में है। अब इसमें जीव भी आए, अजीव द्रव्य भी सब आ गए, और हर एक का अपने अपने में है, तो जितने अनंत, तभी तो अनंतता बन सकती है, अगर एक दूसरे में प्रवेश कर जाए तो अनंतों की अनंतता में से एकम होते 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 एक हो जाएगा सारे। अब बदलाव कहाँ गुंजाइश है कि मैं किसी पदार्थ का कुछ करूं, भोगूं, उसका स्वामी बनूं, उस पर अपना अधिकार चलाऊं, ऐसी रंच भी तो कुछ बात नहीं है, केवल कल्पना ही हो रही है। कोई पर पदार्थ मेरे भोगने में नहीं आता, ये तो ज्ञान के गेय है ना, तो ये तो मान लिया कि मैं भोगता हूँ। मैं ही ब्रह्मवश अज्ञानवश कल्पनाएं उठाए करता हूँ और उन कल्पनाओं से सुख दुख भोगा करता हूँ। वो कल्पनाओं का सुख भी काल्पनिक है, वो भी सच्चा तो है नहीं है। बाह्य पदार्थों से सुख दुख मुझ में आ ही नहीं सकते। प्रथम तो इन समस्त अचेतन पदार्थों में स्वयं में भी सुख दुख नहीं है। क्या कहा, अचेतन में सुख नाम का गुण नहीं, गुण है ही नहीं, तो ना उनमें सुख है ना दुख है। इन घड़ी, चौकी, गद्दा, तकिया आदि में कहाँ सुख दुख है। प्रत्येक पदार्थ का सुख गुण उनका उनमें ही लीन है। प्रश्न चिन्ह क्यों, प्रत्येक पदार्थ का है ना जीव का चाहिए यहाँ पर, अन्य पदार्थों में तो है ही नहीं है। तो कहते सुख गुण उनका उनमें ही लीन है, उनसे बाहर आ ही नहीं सकता। यानी सुख गुण किसमें, तो जीव में, उनका अपने अपने में, वो छोड़कर अपना क्षेत्र छोड़कर बाहर आ नहीं सकता। ना ज्ञान आ सकता है, ना सुख आ सकता, कुछ नहीं उसमें से आ सकता बाहर। तो बाहर आके आशीर्वाद तो देंगे, अपना भला करेंगे कि नहीं करेंगे, बोलो। भगवान तो नहीं कर सकते, गुरु तो करेंगे ना अपना भला। हमारी मान्यता क्या है, ये सोचना हमको। देखो कदाचित आ जाए तो उसका अस्तित्व मिट गया, उसमें से कुछ गुण, एक भी गुण निकल जाए तो उनका अस्तित्व मिट जाएगा, क्योंकि द्रव्य को इसको इतने गुणों के समूह को, और वो अगुण लघु तो गुण क्या बताता है, एक गुण चल कर अलग नहीं हो सकते, क्योंकि द्रव्य का और गुणों का नित्य तादात में संबंध है। वो कोई गुण उसको छोड़ ही नहीं सकता, वो द्रव्यपना ही नहीं रहेगा उसका, क्योंकि उसका अस्तित्व मिट जाएगा। और योगी मुझसे मेरा कुछ कहीं चला जाए तो मेरा अस्तित्व मिटा, यो सारे विश्व का स्वरूप मिट जाएगा। ये मान्यता में अगर हम ऐसा मानेंगे तो ये प्रसंग आ सकता है, ऐसा होगा नहीं, परंतु ये हमारी मान्यता कैसी चल रही है इसकी बात चल रही है। स्वरूप दर्शन की कला का प्रसाद, अपने स्वरूप का दर्शन करना यही कला है। स्वरूप दर्शन की सहज कला, देखो ये है तो सहज, क्योंकि वस्तु का स्वरूप सहज है, उसको किसी ने बनाया नहीं है, तो ये प्रकट होना भी सहज है, परंतु हमने कल्पनाओं से उसको थोप लगा रखा है, उसको अटकाव कर दिया अपनी कल्पनाओं से। क्योंकि तो स्वरूप दर्शन की सहज कला जिसे विदित हो जाए, जिसे पता चल जाए, और अपने अस्तित्व के दृढ़ किले में अपने उपयोग राजा का निवास कर दे, क्या कहते हैं, प्रत्येक तो अस्तित्व है ही, और वो अस्तित्व अनादि अनंत पड़ा है, तो ये तो अस्तित्व का दृढ़ किला है, और अपना उपयोग उसी में लगा ले, इसके ते अपने उपयोग राजा का निवास कर दे, फिर कोई कष्ट ही नहीं है, चिंता ही नहीं है। इस आत्मा मर्म का, आत्मा का मर्म उसका रहस्य, इस आत्मा मर्म का अपरिचयी पुरुष, यानी जिसको आत्मा का अनुभव नहीं है, ऐसा जीव अज्ञान, जीवित भी रहे तो क्या जीवन है, और जिसके आत्मबोध है उसका अपना आध्यात्मिक लौकिक जीवन आनंदमय चला करता है। इन जो अज्ञानी है, आत्मा से अपरिचित है, उसका जीना क्या जीना है, ऐसा कहे। तो कुछ पाया ही नहीं ना उसने जीने का कुछ, ये तो ऐसे ही चला अनादिकाल से ऐसा ही चलता रहेगा उसका। देखिए आध्यात्मिकता,
आध्यात्मिक और लौकिक जीवन माने अध्यात्म और लौकिक जीवन दोनों,
अपना आध्यात्मिक, हाँ दोनों। देखिए आध्यात्मिकता जिनके प्रकट हो उनका व्यवहार धर्म उनके लिए प्रगति में सहायक होता है। जिसको हम व्यवहार धर्म है बाह्य आचरण की बात है, उनके शुभ भावों की बात है, शुभ भावों की वगैरह, उसको हम या व्यवहार नाम देंगे, क्योंकि वो उसके प्रगति में सहायक होता है। और जब तक आध्यात्मिकता नहीं प्रकट हुई तब तक व्यवहार धर्म भी ठीक ठीक नहीं चलता। निश्चय के बिना व्यवहार होता ही नहीं, फिर भी उसने अंगीकार किए तो फिर वो ठीक नहीं चलेगा। जहाँ इस शुद्ध आत्म तत्व में मग्न हो जाए वहाँ फिर यह व्यवहार धर्म भी रहता नहीं है। ये किसकी बात है? पूर्ण रूप से मग्न हो जाने पर। अब जैसे भगवान के क्या वहाँ थोड़े ही व्यवहार ले गया, तो पूर्ण रूप से अपने में मग्न हो, वह तो शुद्ध आनंद में मग्न हो रहा है। निर्मोही ज्ञानी का विकास। एक कवि ने इस तथ्य को यूं अलंकृत किया है कि एक ऐसा अध्यात्म पुरुष था कि उसे संध्या की भी खबर नहीं रही। संध्या करने के समय भी वह लेता ही रहता था। एक पुरुष ने प्रश्न किया, साधु महाराज आप समय पर संध्या भी नहीं करते? तो उसकी ओर से कवि ने उत्तर दिया, मृता मोहमयी माता ज्ञान पुत्रो ये जी जनक सूतवत वे संतापे प्रथम संध्या उपाश्महे। ये अन्य मत में होती ना संध्या करने में, उनके जैसे यहाँ पर सामायिक वगैरह पाठ होते हैं, उनकी संध्या का पाठ होता है। उसको संध्या कहते हैं, वो उसके पुस्तक वगैरह बहुत कुछ कुछ होता है संध्या। दूसरा क्या होता है संध्या, दूसरा कौन सा पाठ होता है उनका? एक नहीं गायत्री मंत्र तो अलग है, दूसरे मैं भूल गया।
जो प्रतीकों में करते हैं
किसको?
जैनियों जो सुबह शाम प्रतिक्रमण करते हैं,
प्रतिक्रमण करेंगे
उनको वो नाम दिया उसने।
हाँ उनके वो भगवान की स्तुति पर ऐसा पाठ होगा उसमें। उसमें क्या भगवान की भक्ति तो करते और कुछ नहीं करते, प्रतिक्रमण जैसा उसमें कुछ है। मैंने मेरा पाप मिटा हुआ है ऐसी बातें नहीं होती उसके अंदर, भगवान का नाम लेते ना। यहाँ कहते हैं साधु कह रहा है, गृहस्थों के पुत्र पैदा होने का सूतक लग जाए तो उसे पूजन करना नहीं बताया, अभिषेक करना नहीं बताया, 10 दिन गुजर जाए तब करे, और कोई मर जाए तो 12 दिन तक न करे, ऐसे रूढ़ी है ना। सूतक लगे हो तो ये पूजन आदि के कार्य न करे। साधु कहता है कि हमारे डबल सूतक लगे हैं, क्या समझे? साधु महाराज के कोई मर गया है क्या, या साधु के कोई लड़का हो गया है क्या? साधु कहता है सुनो, हमारी मोह ममता रूपी माता तो मर गई है, एक तो उसका सूतक लग रहा है, और ज्ञान रूपी पुत्र पैदा हो गया है, एक उसका सूतक लग रहा है। ये पहला बताया ना, मृता मोहमयी माता ज्ञान पुत्रो ही अजी जनन, मैंने उत्पन्न हुआ है, सूतवत द्वय संतापे, सूतवय के सूतक द्वय संतापे चाहिए, सूतक द्वय संतापे चाहिए, सूतक चाहिए, सूतक द्वय संतापे, सूतवध नहीं है वो, सूतक द्वय, वो के बदले क चाहिए। आप में क्या है वैसा ही लिखा हुआ? मैंने डबल संसूतक हो गया, प्रथम संध्या में उपासमय, तो ऐसे दो हो गए ना, डबल सूतक में, यहाँ सूतक में हुआ, सूतक में एक्स्ट्रा तो निकाल दो, हम कैसे संध्या करें? तीसरी लाइन में भाव उसका क्या है, जहाँ मोह रंजक ही नहीं रहता, जहाँ राग द्वेष मोह ममता बिल्कुल नहीं रहते और केवल ज्ञान प्रकाश ही प्रकाश रहे, वहाँ विकल्प कैसे चल सकता है? यानी वहाँ वो भक्ति के विकल्प भी नहीं रहेंगे, ये कहना चाहते, यानी अंतरंग में जिसकी स्थिरता है वहाँ बाह्य भक्ति या जो अन्य जो स्वभाव है वो भी कार्य रूप जाते हैं, ये समय सारे में वो प्रतिक्रमण, और तीसरी भूमि वो अप्रतिक्रमण की, पहले प्रतिक्रमण रूप स्वभाव आत्मस्थिरता होते ही अप्रतिक्रमण हो जाता है उसका। पांचवे पेज पर ये नया पैराग्राफ, अपूर्व परमार्थ लाभ का कर्तव्य, यह स्थिति कैसे हो? जिसे कुछ न कुछ चित्त में हड़ बना है ना कि मुझे तो लखपति बनना है, या हड़ बनाए है मुझे तो ऐसी स्थिति पाना है, कुछ भान होगा, ऐसे जिसके निर्विकल्प भाव के पाने का प्रयत्न हो, भाव हो, वह इस स्थिति को पा लेगा, यानी बारंबार उसी की धुन लगी है, उसकी चाह है तो उसको प्राप्त होगा। जीवन का पूर्ण लाभ तो उसने ही पाया है, बाकी तो यहाँ तो यही ढला चला चल रहा है। जब यह जीव मनुष्य सो जाता है तो मृतकवत हो जाता है, और जब जग जाता है तब मानो जीवन सा पाता है, ये श्लोक की बात दोहरा रहे हैं। ऐसे ही रोज रोज लग रहा है, ऐसे ही इस शरीर में कितने काल तक ठहरना है, जो नित्य छिपे उसके रहने का भरोसा नहीं है, यह शीघ्र ही शरीर छोड़ेगा ऐसा निश्चय करके कोई परमार्थ कार्य कर लो। इस विनश्वर समागम का ऐसा सदुपयोग करो कि अविनश्वर अपूर्व परमात्म तत्व का लाभ मिल जाए। तिरासी नंबर का श्लोक, सत्यं वदात्रय विजन्मनि बन्धुकृत्य आप्तं त्वयातिमपि बन्धुजनाहितार्थम् एतावदेव परमस्ति मृतस्य पश्चात् सम्भूय कायमहितं तव भस्मयन्ति। इसमें से पढ़ती तोरमल जी के पुस्तक में से, तू साँच कही जो तई संसार विषय बंधुजन तई बंधुनी कई करने योग्य हितरू प्रयोजन किछु भी पाया है, सो तो किछु भी कुटुंब तई हित भया दिस्ता नाही, केवल इतना ही उनका उपकार भासे है जो तेरे मुए पीछे इकट्ठे होए करी तेरा बैरी शरीर ताको भस्म करे। क्या समझे? कुटुंबी जनों ने तेरा कुछ उपकार किया नहीं है, एक ही उपकार करेंगे तुम्हारे के बाद ये शरीर को चला देंगे जो तेरा वैरी है, इतना उपकार करेंगे। भावार्थ, भाई बंधु तो उनका नाम है जो अपना किछु हित करे, सो तू जिनको भाई बंधु माने हैं सो इन्होंने किछु हित किया हो सो बताई जाते तेरा मानना साँच हो। बहुरी हमको तो केवल इन्हीं का इतना ही हित करना भासे है जो बैरी का बैरी हो ताको अपना हितु कही है। सो तेरा बैरी शरीर था तो तेरे मुए पीछे मिली करी इन्होंने शरीर को दग्ध किया, तेरा बैर का बदला लिया, ऐसे यहाँ युक्ति करी कुटुंब तय हित होता न जानी राग न करना ऐसी शिक्षा गई है। पढ़ेंगे यहाँ पर बंधुजनों से हित की अनाशा, अन आशा, आशा नहीं करनी। हे बंधु तू सच तो बता कि इस जगत में तू जो बांधव जनों से इतना नेह लगाता है, इसके फल में आखिर वे बंधुजन तुम्हें लाभ क्या पहुंचाएंगे? विचार करने पर यह निर्णय होगा कि कुटुंब से तो मेरा हित होता हुआ न मालूम पड़ेगा, केवल इतना उपकार जरूर कुटुंबी जनों का होगा कि मरे पीछे इकट्ठे होकर मेरा बैरी जो यह शरीर है इसको शीघ्र जलाकर भस्म कर देंगे। कभी अलंकार में यह बता रहा है, इसका मतलब क्या है कि बंधुजनों से तुझे कुछ भी प्राप्त न होगा। बात तो सीधी यह कही गई है, इन बंधुजनों से तुझे कुछ भी प्राप्त न होगा। अंत में ये केवल इतना ही करेंगे, इस शरीर को जलाकर ये भस्म कर देंगे। यह भी उपकार के लिए नहीं है, किंतु कल्पना करो कि यदि किसी के मरे शरीर को भस्म न किया जाए, यूं ही पड़ा रहने दिया जाए, तो प्रजा में जनता में कितना कष्ट बरतेगा। लोग दुर्गंध के मारे परेशान भी होंगे, बीमार भी होंगे। इस कारण शरीर को भस्म करने की जो प्रथा है यह भी कुछ बंधु के उपकार के लिए नहीं है, किंतु अपनी व्यवस्था और सुविधा के लिए है। अंतिम बेअदबी किसी कवि ने लिखा है कि जो लोग अपने मित्रजनों का बंधुजनों का अधिक विनय सत्कार करते हैं, अंत में तो वे भी विलक्षण अविनय ही करेंगे। इस बात को एक कवि ने अपनी भाषा में यूं कहा है, यार मरते वक्त होगा एक बदबी का कार, यार तो पैदल चलेंगे हम जनाजे पर सवार। हे मित्र, जीवन भर मैंने तुम्हारी कभी बेअदबी नहीं की, पर मरते वक्त यानी जब मैं मरूंगा उस वक्त मैं तुम्हारी बेअदबी जरूर करूंगा। कैसी बेअदबी? कि तुम लोग तो पैदल चलोगे और हम तुम्हारे सिर पर चढ़कर जाएंगे। इसका भाव यह है, कितनी भी किसी से घनिष्ठ मित्रता हो पर अंत में विछोह होगा, यानी विरह होगा, वियोग होगा। जो समागम में अनुरक्त रहता है वह विछोह के समय में बहुत दुखी होगा। विपरीत श्रद्धा की हेयता, विपरीत श्रद्धा ने भी कर वो हेय है ना, छोड़ने लायक। भैया, जिन बंधुजनों के पीछे कुटुंबी जनों के लिए तो इतना परेशान हो रहा है, ये बंधुजन तेरा क्या काम कर देंगे, क्या लाभ मिलेगा, क्या शांति मिलेगी? अरे वे तो इतना ही करेंगे कि शरीर को जला देंगे। इतने के अतिरिक्त और कुछ भी तुम्हारा लाभ करने में ये बंधुजन समर्थ नहीं है। जरा स्वरूप दृष्टि करके तो सोचो, जगत में जितने भी जीव हैं, वे सब जीव मेरे ही समान स्वरूप वाले हैं। स्वरूप दृष्टि से मुझमें और अन्य समस्त जीवों में कोई अंतर नहीं है, पर सत्व की दृष्टि से अनुभवन और व्यक्तित्व दृष्टि से प्रत्येक जीव से अत्यंत भिन्न है। अब उन सब जीवों में से परिवार के दो चार जीवों को अपना मान लेना और अन्य समस्त जीवों को पराया मान लेना, यह तो मन की स्वच्छंदता की बात है। वस्तुतः तो भिन्न है तो सब है, समान है तो सब है। तू किसी भी जीव में आसक्त मत हो, यह मेरा है ऐसी बुद्धि को छोड़ दो। परिस्थिति में जो करना पड़ता है ठीक है, पर श्रद्धा विपरीत हो गई है तो इस विपरीत श्रद्धा का फल कोई दूसरा भोगने न आएगा। परिस्थिति में जो करना पड़ता है, जो कुटुंब है वगैरह उसके लिए तो जो कुछ करना है वो तो कर ही रहे हैं, परंतु श्रद्धा तो अपने में ठीक कर ही सकते हैं। तो यदि विपरीत श्रद्धा का फल दूसरा कोई भोगने वाला नहीं है, जो विपरीत यत्न करेगा वही रोवेगा, कोई दूसरा नहीं। समागम का वियोग है क्या जीवन में? जिंदा हुए, बड़े बने, कुछ कला सीखी, कुछ धन कमाया, अंत में बूढ़े हुए, शिथिल हुए, मर गए, चले गए, सबकी यही पद्धति है। एक का मर गया भाई तो लोग आए समझाने, तो कोई यह भी पूछता है कि तुम्हारे भाई साहब क्या कर गए, दान पुण्य वगैरह, तो भाई उत्तर देता है, क्या बताए यार, क्या कारोनामा कर गए, बीए किया, नौकर हुए, पेंशन हुई और मर गए। एक सर्विस वालों की ही क्या बात, सभी की यही कहानी है। कुछ विद्या सीखी, व्यापार की कला सीखी, कुछ धन कमाया, सेठ जी बने, अंत में सब कुछ पुत्रों को बांटा, सौंपा और मर गए। क्या साथ ले गए?
बहुत कुछ।
सो यहाँ के समागमों की ओर से कुछ उत्तर नहीं है इसका। हाँ, किसी ने अपने जीवन में परिणाम निर्मल रखा हो, उससे जो धर्म और पुण्य किया वह साथ ले जाएगा। यह यहाँ के समागम जोड़कर कोई चाहे हम कुछ साथ ले जाए, सो नहीं हो सकता। जिस कमीज को पहने हुए मरे है वह कमीज भी न जाएगी, और कुछ धन पैसा धेला छदाम भी साथ न जाएगा। कैसा साफ निकल जाता है यह। निकल जाने के बाद फिर यहाँ के समागमों का क्या रहा इसके पास? रुकेंगे नहीं तो। जावानी के ज्ञान से सुने लो कालो, सोहानी मस्तकनम सदावे दो।
नमो सिद्धाणु, नमो आयुर्याणु, नमो वाज्यायाणु, नमो लय सौसाणु, नमो अरियंताणु।